नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों से एक दूसरे की ताकत बनने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने व्यापार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कर्नाटक के राज्यपाल ने मैसूरू शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित। और सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ के देशों से एकजुट होने तथा एक दूसरे की ताकत बनने का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री ने आज तीसरे वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ वर्चुअल सम्मेलन में अपने प्रारंभिक वक्तव्य में अनिश्चितता और चुनौतीपूर्ण मौजूदा वैश्विक माहौल पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विश्व अभी कोविड के प्रभाव से पूरी तरह नहीं उभरा है और विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे टकरावों ने ग्लोबल साउथ देशों की विकास यात्रा के लिए बड़ी चुनौती पैदा कर दी है। श्री मोदी ने जोर देकर कहा कि ये देश जलवायु परिवर्तन के साथ साथ स्वास्थ्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा की चिंताओं का सामना कर रहे हैं।
चारों ओर अनिश्चितता का माहौल है। फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी की चिंताएं भी है। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। टेक्नोलॉजी डिवाइड और टेक्नोलॉजी से जुड़ी नई आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही।
प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव और क्षमताओं को साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
ग्लोबल साउथ के सभी देशों के साथ अपने अनुभव, अपनी क्षमताएं साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम आपसी व्यापार, समावेशी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्रगति और विमेन लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देना चाहते हैं।
श्री मोदी ने कहा कि मिशन लाइफ के तहत भारत न केवल देश में बल्कि साझेदार देश में भी रूफटॉप सोलर और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्राथमिकता दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा, क्षमता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्रों में ग्लोबल साउथ देशों के साथ साझेदारी में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। उन्होंने ग्लोबल साउथ यंग डिप्लोमेट फोरम के शुभारंभ का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्लोबल साउथ एक्सीलेंस सेंटर क्षमता निर्माण, कौशल विकास और ज्ञान साझा करने पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत ने ग्लोबल साउथ में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में प्रगति के लिए एक सामाजिक कोष की स्थापना की है। श्री मोदी ने कहा कि स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए भारत का मिशन एक विश्व एक स्वास्थ्य और विजन आरोग्य मैत्री है। उन्होंने कहा कि भारत ने अफ्रीका तथा प्रशांत द्वीप देशों में अस्पतालों, डायलिसिस मशीनों, जीवन रक्षक दवाओं और जन औषधि केंद्रों पर सहयोग के जरिए इस क्षेत्र में मैत्री को कायम किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानवीय संकट के समय भारत ने मित्र राष्ट्रों की सबसे पहले सहायता की है। बाद में श्री मोदी ने अपने समापन भाषण में कहा कि आज की चर्चा के साथ मिलकर आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह चर्चा ग्लोबल साउथ देशों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने भारत की ओर से एक व्यापक वैश्विक विकास समझौते का भी प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि इस समझौते की नींव भारत की विकास यात्रा और विकास साझेदारी के अनुभव पर आधारित होगी।
ट्रेड प्रमोशन एक्टिविटीज को बल देने के लिए भारत 2.5 मिलियन डॉलर के विशेष फंड की शुरुआत करेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ट्रेड पॉलिसी और ट्रेड नेगोशिएशन में ट्रेनिंग उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए 1 मिलियन डॉलर का फंड प्रदान किया जाएगा।
शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देश विकास की चुनौतियों, प्राथमिकताओं और समाधानों पर विचार विमर्श जारी रखेंगे। इस शिखर सम्मेलन का विषय सतत भविष्य के लिए सशक्त ग्लोबल साउथ है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने ग्लोबल साउथ के देशों से कम लागत वाली और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर सुविधाजनक बनाने के लिए एक परिवार के रूप में मिलकर काम करने का आग्रह किया है। आज तीसरे वॉयस ऑफ द ग्लोबल साउथ सम्मेलन में विदेश मंत्रियों के पहले सत्र में बोलते हुए डॉ जयशंकर ने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश कई संघर्षों, तनावों और दबावों से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि विचारों के इस आदान प्रदान का उद्देश्य इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे हितों को परिभाषित करता है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने आज मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण MUDA के साइट आवंटन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। ये मंजूरी TJ अब्राहम, प्रदीप और स्नेहामयी कृष्ण की याचिकाओं के संबंध में दी गई है। याचिकाओं में कहा गया है कि सिद्धरमैया ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि अपने करीबियों के परिवारों को दी। सिद्धरमैया पर यह भी आरोप है कि उन्होंने 2013 के चुनाव हलफनामे में इन संपत्तियों का विवरण नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक आज दोपहर नई दिल्ली में होगी। पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पार्टी के सदस्यता अभियान और संगठनात्मक चुनावों के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर भी चर्चा होने की संभावना है। लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा पदाधिकारियों की ये पहली बड़ी बैठक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
अजी सुनती हो, आशा दीदी से क्या बात हुई?
उन्होंने मुन्नी को दस्त से बचाने का उपाय बताया।
क्या बताया?
6 महीने तक उसे सिर्फ माँ का दूध पिलाना है। 6 महीने बाद उम्र के अनुसार संपूर्ण पौष्टिक आहार खिलाना है। 5 साल तक हर 6 महीने में विटामिन ए पिलाना और याद से रोटा वायरस और खसरा का टीका सही समय पर लगवाना है।
बहुत बढ़िया, दस्त के विरुद्ध हम है तैयार, क्योंकि साथ है
रक्षा, रोकथाम और उपचार।
अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कोलकाता में RG कर राजकीय अस्पताल में एक महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ IMA ने आज 24 घंटे की देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। IMA ने सुबह 6 बजे से OPD और अन्य सामान्य सेवाएं बंद करने की अपील की है। संगठन ने इस मामले में न्याय और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की मांग की है। संगठन की अपील को देखते हुए इस हड़ताल में निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य कर्मियों भी शामिल हो रहे हैं। हड़ताल के कारण बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं गंभीर रूप से प्रभावित है। राज्य मेडिकल कॉलेज के जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर कार्यस्थल पर चिकित्सकों की सुरक्षा को लेकर हड़ताल पर हैं। पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, नालंदा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना में आपातकालीन और OPD सुविधाओं के बंद होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने निर्देश दिया है कि डॉक्टरों के साथ हिंसा के मामले में 6 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराई जानी चाहिए और इसकी जिम्मेदारी संस्थान प्रमुख की होगी। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों और मेडिकल छात्रों ने विरोध जारी रखा है। राम मनोहर लोहिया अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के डॉक्टर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली के संकाय सदस्य भी हड़ताल में शामिल हो गए हैं। भारतीय चिकित्सा संघ के 24 घंटे की हड़ताल के आह्वान को देखते हुए मुंबई में साइन, नायर और कूपर अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों के संघ BMC MARD ने आज आजाद मैदान में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी दोषियों को सजा देने की मांग कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल सरकार पर आरोप लगाया कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है जो इस घटना के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए पार्टी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार ने 43 डॉक्टरों का तबादला कर दिया है जो न्याय के लिए आवाज उठा रहे थे।
ये तालिबानी फतवा है पश्चिम बंगाल की सरकार का, जो मीडिया के माध्यम से ही मुझे प्राप्त हुआ है कि किस प्रकार से इस बेटी के लिए न्याय के लिए आवाज उठाने वाले 43 डॉक्टर्स को पश्चिम बंगाल की सरकार ने ट्रांसफर करने का निर्देश दे दिया है और ट्रांसफर उनकी कई दूर दराज इलाकों में भी की गई है। और मैं केवल ये नहीं कह रहा हूँ, यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट एसोसिएशन ने भी ट्वीट करके कहा है, वी स्ट्रांगली कंडेम ममता बैनर्जी द अनजस्ट ट्रांसफर ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु सपोर्टेड आवर प्रोटेस्ट। These punitive measures will not silence our demands for justice and security. We stand united and resolute in our fight.
श्री पुनावाला ने सत्तारूढ़ टीएमसी पर इस मामले में दोषियों को बचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन देते हुए उनसे व्यापक जनहित में कार्य पर लौटने का आग्रह किया है. मंत्रालय ने कहा है कि स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपायों का सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई जाएगी और राज्य सरकारों सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधियों को अपने सुझाव साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा. जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव 3 चरणों में होंगे. नामांकन प्रक्रिया इस महीने की 20 तारीख से शुरू होगी जबकि परिणाम 4 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. जम्मू कश्मीर विधानसभा में 90 सीटें हैं. भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी और सीपीआईएम पार्टियों सहित सभी राजनीतिक पार्टियां और आम लोगों ने इस निर्णय का स्वागत किया है. जम्मू कश्मीर में 90 विधानसभा सीटों में 74 सामान्य वर्ग के लिए, 7 अनुसूचित जाति और 9 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के एक दिन के दौरे पर हैं. नेल्लौर पहुंचने पर उपराष्ट्रपति का स्वागत राज्यपाल अब्दुल नजीर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने किया. उपराष्ट्रपति वहां से वेंकटचलम स्थित अक्षरा विद्यालय गए. स्कूल में चलाए जा रहे कौशल विकास केंद्र का निरीक्षण करते हुए श्री धनखड़ ने वर्तमान परिदृश्य में युवाओं को कौशल विकास में प्रशिक्षण प्रदान करने के महत्व पर जोर दिया. आकाशवाणी समाचार से प्रसारित होने वाले प्रति घंटा समाचार बुलेटिनों का प्रसारण क्रम को संशोधित किया गया है. यह संशोधन 18 अगस्त को मध्यरात्रि 12 बजे से प्रभावी होगा. इस बदलाव के बाद 5 मिनट के हिंदी के सभी समाचार बुलेटिन का प्रसारण पहले होगा. उसके बाद 5 मिनट के अंग्रेजी समाचार बुलेटिन प्रसारित किए जाएंगे. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं. टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल और शॉटपुट स्टार भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरालंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक होंगे. पैरालंपिक खेल 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होंगे. इन खेलों में 84 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे. पैरालंपिक खेलों में देश का यह अब तक का सबसे बड़ा दल है. टोक्यो पैरालंपिक में कुल 54 एथलीटों ने देश का प्रतिनिधित्व किया था. सुमित पुरुषों की भाला फेंक F64 श्रेणी में मौजूदा पैरालंपिक चैंपियन हैं. देश की शीर्ष महिला पहलवान विनेश फोगाट आज सुबह पेरिस से स्वदेश लौट आईं. नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद प्रशंसकों ने विनेश का भव्य स्वागत किया. विनेश के परिवार के सदस्य और रिश्तेदार भी उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे के बाहर मौजूद थे. विनेश को महिलाओं की 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल मुकाबले में पहले 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था. चीन के पेचिंग में आयोजित 17वीं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारतीय छात्रों के दल ने 3 स्वर्ण, 2 रजत, 3 कांस्य पदक जीते हैं. ओलंपियाड का आयोजन 8 से 16 अगस्त के बीच हुआ. पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने भारतीय टीम को बधाई दी और प्रसन्नता व्यक्त की. देश के पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में अगले 6 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान है. केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी अगले 2 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने की संभावना है. आज मलयाली नववर्ष का पहला दिन है. मलयाली कैलेंडर में नववर्ष के पहले महीने को चिंगम कहा जाता है. इस अवसर पर राज्यभर में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ चिंगम मास का स्वागत किया जाता है. अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल साउथ देशों से एक दूसरे की ताकत बनने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया. उन्होंने व्यापार और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की. कर्नाटक के राज्यपाल ने मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण साइट आवंटन घोटाले मामले में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी. कोलकाता में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के विरोध में डॉक्टरों की हड़ताल से देश भर में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित. सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव पेरिस पैरालंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक होंगे. इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ. नमस्कार.